SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं ज्योतिका। सिद्ध नाटककार एस शक्तिधरन के नई नाटक द रॉन्ग गॉड्स ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। ये कहानी परंपरा और प्रगति के टकराव की है, जो एक छोटे से भारतीय गांव में जन्म लेती है और पूरे विश्व की बड़ी सच्चाइयों को छूती है। चार कलाकारों और सिर्फ 90 मिनट में ये नाटक एक गहरी और प्रभावशाली अनुभूति कराता है। आज हम इसी नाटक में मुख्य भूमिका निभाने वाली ये कलाकार राधिका मुदालिया से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका ये सफर। राधिका, SBS हिंदी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका।
धन्यवाद। हेलो
राधिका, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या है ये नाटक, क्या है ये कहानी, और आपके किरदार की अगर खास तौर से बात की जाए तो कैसा है ये किरदार?
जैसे आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इंट्रोडक्शन में बताया, ये नाटक है विकास और प्रकृति के बीच की सारे ऑब्स्टिकल्स और उनके बीच में फंसे हुए एक माँ और बेटी के रिलेशनशिप के बारे में। और किस कॉस्ट पे आजादी मिलती है, किस जगह से सारे रिसोर्सेज आते हैं और इसका कॉस्ट कौन चुकाता है, इसके बारे में। मैं ईशा का किरदार निभा रही हूँ और दो एक्ट्स में अलग अलग टाइम फ्रेम्स में होती है। तो पहले एक्ट में वो 16 साल की लड़की होती है और दूसरे एक्ट में जब वो वापस घर लौटती है तभी और थोड़ी बड़ी होके आती है। ईशा काफी केपेबल लड़की है जो अपने एनवायरमेंट से निकल के और कुछ बड़ा करने की कोशिश करती है। और उसके बीच में उनकी माँ को ईशा को एक ही जगह में बांध के रखना होता है क्योंकि वो समझते हैं कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें साइंस में इंटरेस्ट होता है ईशा को, और आगे पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, और कैसे वो दोनों सेपरेट होते हैं और वापस आते हैं।
अगर नाटक में बात की जाए तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, यानी परंपरा और आधुनिकता के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगी, कैसे इसको हमारे साथ बांटेंगी? क्या आपने अपनी रियल लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है?
इस प्ले में एक्सप्लोर ऐसे किया गया है कि हर चीज कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कि हर जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं हमारे, जो भी हमें बिना समझे हमारे बिलीफ्स होते हैं, बिना क्वेश्चन किए हुए बिलीफ्स होते हैं, वो सारे कहीं से तो आते हैं। और वो स्टोरीज कौन डिक्टेट करता है और कौन डिसाइड करता है कि कौन किस चीज में बिलीव करेगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होता है। और इस प्ले में हर कैरेक्टर किसी ना किसी मोड़ पे आके रुकता है जहाँ पे उनके बिलीफ्स क्वेश्चन होते हैं, उनके जो वो समझते हैं कि ये तो है ही, या ये तो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, उनके कोर बिलीफ्स चैलेंज होते हैं। और इसमें बहुत कभी कभी नॉट फिजिकल वायलेंस ऑलवेज बट जस्ट वायलेंस ऑफ थॉट कि अंदर की लाइफ में जो बहुत जोर से झटका लगता है वो दिखाया जाता है. और हर कैरेक्टर के साथ ये बार बार होते जाता है जब तक ऑडियंस अपने ही सारे बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करने लगती.
एस शक्तिधरन की बात करें तो जाने माने लेखक हैं और बहुत सारे अच्छे नाटक उन्होंने दिए हैं, उनके साथ काम करना आपको कैसा लगा?
हाँ, हम लोग लास्ट ईयर जब मेलबर्न, न्यूयॉर्क और सिडनी का टूर किया था काउंटिंग एंड क्रैकिंग में, उसमें भी मैंने शक्तिधरन जी के साथ काम किया था. और वो बहुत ही ओपन इंसान है और बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है. और हम जैसे रिहर्सल करते हैं तब भी वो आके बैठते हैं और बहुत ही ओपनली हम उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और वो अपने अपने खुद के कॉन्सेप्ट अबाउट द प्ले को भी चैलेंज करने के लिए तैयार होता है. ये मैंने देखा नहीं है वैसे डायरेक्टर्स के साथ ज्यादा, कि वो अपने लिखे हुए चीज को प्रेशियसली नहीं ट्रीट करते. वो तैयार होते हैं कि क्वेश्चन करें, उसको बदलें या उसको बेटर बनाएं. अभी हम वीक 5 में हैं रिहर्सल्स और अब भी हम लोग स्क्रिप्ट को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, इसको हम बदल सकते हैं क्या, इसको और बेटर बना सकते हैं क्या. तो वो काफी डायनामिक इंसान है वैसे अपने काम को भी लेके.
जी, 4 एक्टर्स हैं सिर्फ प्ले में अगर मैं सही हूँ, और इतना पावरफुल और लेयर्ड काफी तय है उसमें प्ले में, तो इसको स्टेज पर लाना आई एम श्योर काफी चैलेंजिंग होगा. आपके लिए सबसे टफ और सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट कौन सा था?
आई थिंक पूरा ही प्रोसेस काफी टफ रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप सोचे कि 4 कैरेक्टर्स को एक इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल टास्क करना है कि मॉडर्निटी और नेचुरल वर्ल्ड, अर्बनाइजेशन और यू नो कंजर्वेशन, इन दो चीजों के बीच में अगर 4 लोगों को बैठ के पूरा डिस्कशन करना है कि क्यों है, कैसे है, कैसे बदला, हम कहाँ गलत हुए, ये काफी बड़ा टास्क है. तो हर कैरेक्टर एक, जैसे टाइटल में लिखा है रॉन्ग गॉड्स, हर कैरेक्टर ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे आके एक गॉड बनता है इन टर्म्स ऑफ उनका बिहेवियर, उनका वो जो कम्युनिकेट कर रहा है वो गॉडली बनता है, क्योंकि वो इतना बड़ा आइडियोलॉजी हर एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है. और ईशा वो कैरेक्टर है जो इन तीनों और 3 जो कैरेक्टर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि क्योंकि वो 3 जो है वो स्थिर आइडियोलॉजीज होते हैं कि ये सपोज अगर अर्बनाइजेशन को एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है और नेचुरल वर्ल्ड को दूसरा पर्सन, ट्रेडिशन को तीसरा पर्सन, ऐसे अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ईशा वो कैरेक्टर है जो तीनों से इन्फ्लुएंस होके अपना बिलीफ बदलती है. फिर एक और पर्सन उनके जिंदगी में आता है, उनसे इंस्पायर होके और बिलीफ बदलती है, अपना ट्रूथ ढूंढते रहती है. तो ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करना काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि उनका आर्क हमेशा बदलते रहता है, वो कभी किसी चीज में स्थिर नहीं होते. तो ये मेरे लिए सबसे टफ पार्ट रहा है और मुझे नहीं लगता अब तक मैंने क्रैक भी किया है उसको. आई थिंक मेरा अब भी जाके इंटेलेक्चुअल लेवल से लेके अभी वो इंस्टिंक्चुअल लेवल में आ रहा है. तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वीक कुछ तो मैजिकल होने वाला है
जी.
इस कैरेक्टर के साथ. और तीनों इतने अमेजिंग हैं एक्टर्स जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ. तो इतना इंटीमेट स्पेस होते हुए भी, सिर्फ 4 कैरेक्टर होते हुए भी, वो इतना इतना एक्सपेंसिव प्ले है.
कैसी बॉन्डिंग रही आप चारों की आपस में रिहर्सल्स के दौरान, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ बांटना, क्योंकि जिस तरह से कहा आपने आज तक काफी यू नो चैलेंजिंग चल रही है अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए, तो किस तरह से एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को आपने शेयर किया ताकि एक बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर चीज निकल कर सामने आए?
जी, हम लोग बहुत केयर करते हैं कि हम ठीक से वार्म अप करें, ठीक से कूल डाउन करें. और हम चारों की अच्छे से बहुत बनती है. तो हम बहुत सारे जोक्स क्रैक करते रहते हैं, जब भी टी टाइम हो तब एक साथ हैंग आउट करते हैं. और जैसे बहुत एक्शन है, बहुत सारा फाइट सीक्वेंसेस, ऐसी सारी चीजें हैं, वेपन्स हैं इसमें, तो इस चीज को जब रिपीट करते हैं आप, तो आपके बॉडी में वो रेजिड्यू रह जाता है. तो इसको टैप आउट करना काफी जरूरी है. तो एट द एंड ऑफ हर एवरी रिहर्सल के अंत में हम लोग आके टैप आउट करते हैं एक दूसरे के साथ और चेक इन करते हैं कि आप कैसा लग रहा है. हम कैरेक्टर थे, अब हम वापस एक्टर बन चुके हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो हम लोग अच्छे से करते हैं. और वैसे तो हम बहुत हमारी बनती है एक साथ.
जी बिल्कुल. और आप क्या चाहेंगे कि ऑडियंस इस नाटक से क्या लेकर जाए? क्या कोई स्पेसिफिक इस तरह का कोई संदेश है, कोई मैसेज है जो आप देना चाहते हैं ऑडियंस को या उनको सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं?
मैं ऑडियंस को ये आई थिंक ऑडियंस पहले तो ये प्ले जो होता है, प्ले जब नाटक देखने जाते हैं तो पूरा वो सारे इमेजेस, सारा वो फीलिंग को अपने ऊपर से वॉश ओवर होने देना चाहिए. और फिर जब अगले दिन जाके बैठते हैं हम तो रैंडमली चीजें याद आती है कि अरे ऐसा था उसमें. आई थिंक थिएटर इज द ओनली मीडियम दैट डज दैट. तो जब ये बैठ के हम सोचते हैं, मैं ये चाहूंगी कि वो अपने चॉइसेस के बारे में सोचे, नॉट द बिग चॉइसेस दैट वी मेक इन लाइफ, बट जो क्वेश्चन करे कि हम जो सारे कन्वीनियंसेस, हमारे सारे ऐसे ईजिली अवेलेबल, नल खुलता है पानी निकलती है, ये सब चीजें कहाँ से आ रहे हैं और ये मुफ्त तो नहीं हो सकते. तो इसका कॉस्ट एक्चुअली कौन दे रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी, पैसों की कॉस्ट नहीं, पर लिटरली अगर कोई नदी है उसको आपको सिटी तक पहुंचाने में एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ये चीजों के बारे में मैं ऑडियंस को सोचने के लिए इनकरेज करूंगी.
जी राधिका, आपने थिएटर की बात कही है तो उसी से एक सवाल मन में आया है. हम सभी जानते हैं कि हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं और हमारे हाथ में वो गैजेट है, वो जादू है जो सिर्फ एक टच से हमें दुनिया के किसी भी कोने के साथ जोड़ सकता है. ऐसे में थिएटर कहाँ स्टैंड करता है या कहाँ लैक कर रहा है या क्या कुछ और करना जरूरी है जो इसको और ज्यादा बेहतर बना पाए और इसकी एग्जिस्टेंस पर जो आज सवाल है उसके जवाब दे पाए?
ये चीज काफी कॉमन है कि हमें लगता है कि हम बहुत इंटरकनेक्टेड है क्योंकि स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, क्योंकि इंटरनेट आ चुका है. इस एज में किसी भी चीज का होना इनटेंजिबिलिटी और टेंजिबिलिटी, यानी हिंदी में कैसे बताएंगे, असली चीज हाथ में जो देख सके, जो छू सके, ऐसी चीज और जो नहीं टच कर सकते, जैसे अटेंशन, इन दोनों चीजों के बीच में लाइन बहुत बहुत बारीक होती गई. तो अभी अगर आप करेंसी को भी देख लें तो पैसा आप सिर्फ अपने फोन पे देख सकते हैं, नंबर्स हैं पैसे. इसमें असली क्या है और रियल फीलिंग्स क्या है? रियल, यू कैन ऑर्डर एनीथिंग, लाइक आप किसी भी चीज को डिजिटलाइज कर सकते हो. आप प्यार को डिजिटलाइज कर सकते हो, आप यू नो टिंडर डाउनलोड कर सकते हो, आप shaadi.com पे जाके यू नो ब्राइड या ग्रूम या यू नो ढूंढ सकते हो. तो इसमें आप जनरली रियल थिंग्स को की वैल्यू कम होती जा रही है. और जब आप एक थिएटर के अंदर एंटर करते हो, आप एक तो फोन बंद ही करना पड़ता है. दूसरा, आप रियल ब्रीदिंग पीपल के साथ एक कहानी पे जाते हो, आपको मजबूरन जाना ही पड़ता है क्योंकि वो एक बंद कमरे में पूरा लाइक क्वायर इफेक्ट होता है जहाँ पे एवरीवन इज ब्रीदिंग एंड फीलिंग द सेम थिंग, एक ही चीज को महसूस करते हैं सब लोग. और फिल्मों के साथ आई थिंक जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ती गई है वैसे आप कभी भी किसी चीज को पॉज कर सकते हो, बाद में आके देख सकते हो. आप 5-5 मिनट करके एक एपिसोड देख सकते हो या एपिसोडिकली एक स्टोरी देख सकते हो, लेकिन थिएटर में आप एक इवनिंग में आपको एक पूरी कहानी देखनी पड़ती है. और जब आप एक कोहिसिव स्टोरी को अच्छे से देखते हो, स्पेशली गुड थिएटर अगर आप देखते हो, तो उसमें आपको याद आता है कि असलियत है क्या, ह्यूमननेस क्या होती है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें किस चीज की एक मिरर सा दिखने लगता है. तो इसीलिए थिएटर एक इंक्रीसिंगली रेलेवेंट मीडियम है आर्ट का. नॉट आई डोंट थिंक एट ऑल इन एनी वे कि वो इररेलेवेंट कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन इंटरेक्शन है जो कभी इररेलेवेंट नहीं हो सकता.
राधिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला और SBS हिंदी के साथ आपने बातचीत की, अपना सफर हमारे साथ बांटा। आने वाले वक्त के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और खासकर इस नाटक के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बातचीत के लिए वक्त निकाला।
थैंक यू सो मच ज्योतिका, इट वाज अ प्लेजर।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी ज्योतिका के साथ।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।